सूरत रूम से शुरू करेंगे। अल्लाह के नबी की पेशन गोइयाँ, प्रोफेसिस, फोरकास, उनमें से ये सूरत है नंबर एक। दूसरी बात है, इसमें लस मिन आयाती ही आप नोट कीजिएगा, बहुत सारी निशानियों का तذکرہ है इसमें। 30th नंबर की सूरह है, 60 आयात हैं। आज तो रूम नाम का एक मुल्क या शहर भी है, उस दौर में कुछ हिस्ट्री की बातें थी। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दी वहुम मिन बादी गलबिहिम सयग्लिबून। पूरी सूरत में अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को पेश किया है, आप देखें ना, 8 हिस्से हैं इसके, क्योंकि अब सूरतें आती जा रही हैं ना, तो मैं सारा आपको उसका कॉन्टेक्स्ट शुरू में देकर तर्जमे पे इक्तफा करूँगी, ताकि आपको सूरत की कुछ पहचान तो हो। पहली बात है कि पहली 7 आयतों में अल्लाह के तमाम वादे पूरा होना हतमी है, इसका यकीन दिलाया जा रहा है। आयत 8 में ये कायनात बा मकसद है, इसका यकीन दिलाया जा रहा है। फिर आयत 9 से 19 तक कुफार पर अजाब ज़रूर आएगा, ये अल्लाह की सुन्नत है। 20 से 26 में इंसान की तस्कीन के लिए अल्लाह ताला की अता करदा बेशुमार नेमतों का तस्करा। फिर 27 से 39 में कायनात की खलकत में, यानी उसकी तख्लीक में अल्लाह की वाहदानियत का तस्करा। 40 से 47 में इंसान की तख्लीक और रिस्क देने पर अल्लाह की कुदरत की बात है। और फिर 48 से 53 में ज़मीन जिंदा करने पर अल्लाह कादिर है। और फिर आखिर तक 55 से 60 में, अगरचे काफिर ना माने लेकिन अल्लाह का वादा सच्चा है। ये है जी इन अ नटशेल। शुरू करते हैं। रुकू नंबर 4 है, पारे के एतबार से पहली 10 आयात। टॉपिक है मुसलमानों के लिए खुशखबरी। अलिफ लाम मीम। गुलिबतिर रूम। रूमी मغلوب हो गए हैं नज़दीक की ज़मीन पर, और वो मغلوب होने के बाद अनकरीब ग़ालिब आ जाएंगे, चंद साल में ही, इससे पहले और इसके बाद भी। और इख्तियार तो अल्लाह ताला ही का है। इस रोज़ मुसलमान शादमां होंगे अल्लाह की मदद से, वो जिसकी चाहता है मदद करता है, असल ग़ालिब और मेहरबान वही है। अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वो तो सिर्फ़ दुनियावी ज़िंदगी के ज़ाहिर को ही जानते हैं और आख़रत से बिल्कुल ही बेखबर हैं। क्या इन लोगों ने अपने दिल में ये गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों को और ज़मीन को, जो इनके दरमियान है, उस सब को बेहतरीन करीने से मुकर्रर वक्त तक के लिए पैदा किया है? हाँ, अक्सर लोग यकीनन अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। क्या उन्होंने ज़मीन में चल फिर कर नहीं देखा कि इनसे पहले लोगों का अंजाम कैसा बुरा हुआ? वो इनसे बहुत ज़्यादा तवाना और ताकतवर थे, यानी सुपर पावर्स थी अपने वक्त की, और उन्होंने भी ज़मीन बोई जोती थी, यानी खेती बाड़ी की, और इनसे ज़्यादा आबाद की थी, और इनके पास इनके रसूल रोशन दलाइल लेकर आए थे। ये तो नामुमकिन था कि अल्लाह ताला इन पर जुल्म करता, लेकिन दरअसल वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। फिर आखिर बुरा करने वालों का बुरा ही अंजाम हुआ, इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयतों को झुठलाते थे और इसकी हंसी उड़ाते थे। तो सूरत रूम निशानियों वाली सूरत है। 4 किस्म की निशानियाँ होती हैं, नोट कर लीजिए। साइंस ऑफ अल्लाह। नंबर एक, कुरान की आयतें 6,000 से ज़ायद हैं। कौनी कायनात की ला तादाद हैं। इन नफ़ी खल्क़ समावाती वल अर्ज़ को जहन में ले लें। तीसरी किस्म की निशानियाँ हैं दलाइल अनफुस। इसमें मिसाल आप अपनी लीजिए, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव याद करें। कभी दुख, कभी सुख, कभी बीमारी आई, बिल्कुल मौत के मुंह से निकल आए बाकी। आप निशानियाँ चलते फिरते दुनिया में इस बात के कि अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा कर दे, अल्लाह बीमारों को सेहत दे दे। हज़रत सुलेमान निशानी है दलाइल अनफुस में, कैसे आज़ादी से ग़ुलामी और ग़ुलामी से फिर इतनी कीमती बनने का सफ़र। ये आपकी मेरी ज़िंदगी में हर वक्त हो रहा है। कभी धूप, कभी छाँव में अल्लाह डालकर आपको आपकी ज़िंदगी के कई सबक पढ़ाता है, और जो अपनी ज़िंदगी के दुख सुख से ना समझे, वो नहीं किसी से समझेगा। वो तो इतना निकम्मा है कि उसने कभी किसी को उस्ताद नहीं बनाना। और चौथी चीज़ें हैं तारीख की निशानियाँ, हिस्ट्री रिपीट्स। तो क्या पता चला कि हम सब अपने इर्द गिर्द झांके, और इसमें ख़ास तौर पे रोम्स के मगलूबियत और उसकी बात है, ग़ज़वे बदर वाले दिन ये प्रोफेसी सच साबित हो गई, और पता चला कि कुरान अल्लाह की तरफ से है। अगर ये बात सच है, तो फिर बाकी बातें सच क्यों नहीं होंगी, जिसका तذکرہ आने वाले दौर के लिए और क़यामत के बाद के लिए। आपने मैंने क्या सीखना है? अल्लाह के वादों को सच्चा जानना है, दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत को जानना है, آخرت سے غافل نہیں ہونا، غور و فکر کرنا، رب کی ملاقات سے انکار نہیں کرنا اور برے کام نہیں کرنے. اللہ آپ کو مجھے توفیق دے. رکوع نمبر 5 آیت نمبر 11 سے 19، زندگی بعد الموت. اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے قیامت ایک ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ ہوگا. آپ اچانک کوئی مہمان دیکھے تو گھبرا دیں، کیسے، کیوں، کیسے آ گئے. اور ایک وہ مہمان ہے جس کا آپ پہلے سے نہ صرف یہ کہ انتظار کر رہے تھے، راستہ دیکھ رہے تھے. مومن قیامت کی راہ دیکھ رہا ہے، جلدی سے قیامت آئے اور میں اس جگہ پہ پہنچوں کہ جہاں رضی اللہ عنہ کا مطلب سمجھ آنا ہے. کافر کے لیے قیامت ایک ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ ہے. ہائے آگے فبوہیتا، وہی کیفیت یاد کیجیے. اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی. جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا، وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے. یعنی قیامت کے دن پیشیاں ہوں گی، گرفتاریاں ہوں گی. پس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو، اور تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی ہے. تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. کیا پتہ چلا؟ آیت 15 جنت کی نعمتیں، صحابہ کرام جنت میں خوش و خرم ہوں گے. یہاں لفظ آئے یحبرون، کیا ہوتا ہے؟ حبر جو ہے نا سیاہی کو کہتے ہیں، اور بناؤ سنگھار کو بھی کہتے ہیں، میک اپ، اس میں بھی تو ہم وہ آئی پینسلیں ہی لگا رہے ہوتے ہیں نا، کہیں لپ پینسل. یخبرون سمجھ آ گیا لفظ؟ کاسمیٹکس کیا ہوتے ہیں؟ رنگ برنگی سیاہیاں، کوئی سرخ ہے تو کوئی نیلی ہے تو پیلی ہے. یخبرون کے تین معنی نوٹ کیجئے، مسرت، لذت اور شان و شوکت. اللہ آپ کو مجھے جنت میں یہ بناؤ سنگھار عطا فرمائے. پھر آئے 17 میں، چونکہ تسبیح کی بات ہوئی تو وہ تسبیح دہرا لیجئے جو بخاری میں 6682 میں ابو ہریرہ کی روایت سے ملی ہمیں، کہ کلیمتانی خفیفتانی والی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر آپ دیکھیے کہ آیت 19 میں مردوں سے زندہ اور زندہ سے مردہ کی بات ہوئی، تو یہ پیارا سا چوزہ ہے، اس کو دیکھ لیجئے کہ آپ اس چوزے کو بھی دیکھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس انڈے کو جو شاید روز ہی کھاتے ہوں گے لیکن انسان غور کم کرتا ہے. پھر آگے دیکھیں، مردوں سے زندہ کو اور زندوں سے مردہ کو نکالنے میں پلانٹس، بیج سے درخت کا سفر آپ کے سامنے ہے. کڈنی بیج، پھر اس میں جڑ پھوٹی، پھر جڑ بڑی ہوتی گئی، ہوتے ہوتے گئے. کیا ہمارے آپ کے بچے ایسے نہیں ہیں؟ پہلے اندر جنین بن کے چھپے ہوئے تھے پیٹوں میں، اب ہمیں بھی ان کو ایسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے، اتنے ماشاء اللہ لمبے چوڑے ہو گئے اور عقل پوری پوری ہے، سمجھتے اپنے آپ کو بہت عقل مند ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مردوں سے زندہ اور زندہ سے مردوں میں، یہ آپ دیکھیے مدر ووم میں بچے کی فارمز، امبریولوجی جس کو کہتے ہیں، کیسے بچہ فرٹیلائزڈ ایگ سے شروع ہوتا ہے. یعنی اگر آپ سٹیجز دیکھیں نا تو آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا. پہلے ایگ فرٹیلائزڈ ہوتا ہے، پھر سیل سٹیج آتی ہے، پھر اس کے بعد 2 سے 4 ہوئے، اور ہوتے ہوتے پھر سیلز بڑھتے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسے پلیسنٹا کرتے کرتے یہ 20 ویک میں ایک چھوٹا سا بیبی ریڈی ہو جاتا ہے. اٹس ویری کلوز ٹو ڈیلیور، لیکن اللہ اس کو ماں کے پیٹ میں کچھ مہینے رہتا ہے کہ پہلے ادھر رہ لو، اب ادھر ہی ٹھیک ہو، باہر آ کے تم نے ماں کو خوب تنگ کرنا ہے تو ذرا تھوڑے دن پیٹ میں رہ لو. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہے سورت روم نشانیاں. یہ کون سی نشانی ہے؟ کونی نشانی ہے؟ کیا سیکھا؟ ایمان بھی لانا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں جھٹلانا، آخرت کی ملاقات کو نہیں جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کرنی ہے، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا ہے. رکوع نمبر 6 20 سے 27، 20 to 27، عقل مندوں کے لیے کائنات میں نشانیاں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو. یہ مٹی ہے جو ساری چاروں طرف پھر رہی ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں نا کہ ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دینا، बंदा मट्टी का लगने देता है अपने कपड़ों को, हाय मट्टी लग गई। तो ये आप और मैं क्या है, लिखिए मट्टी को हुसन दिया अल्लाह ने। तो ये मट्टी चल फिर रही है इर्द गिर्द हमारे, आपके इसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिन से बीवियां पैदा की ताकि तुम इनसे आराम पाओ, इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी। यकीनन ये गौर और फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानी है। ज़रा सा इस आयत पे गौर किया आपने, फिल्म इंडस्ट्री क्या कहती है, लव एट फर्स्ट साइट, रोमांस एट अदर साइट, और गंदबला ऑन एवरी साइट, और उसके बाद शादी हो गई तो फिल्म ख़त्म। देयर इज़ नो रोमांस आफ्टर मैरिज, कुरान क्या कह रहा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी मोहब्बत पैदा की, लिविंग टुगेदर वाले से नहीं, अजवाज से। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि निकाह से ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई नहीं जो दो अजनबियों के दिल में उल्फत डाल दे। अपने दिलों को झांक कर देख लीजिए, लाख लड़े भिड़े फिर भी आप कहते अच्छे ही हैं, और वो भी आपके साथ झगड़े करे बाहर जाके कहते हैं है वैसी बड़े सब्र अली, मेरे साथ गुजारा कर रही है ना। तो अपने शोहरों की कदर कीजिए और अपनी बीवियों की भी ना कदरी ना कीजिए। ये बड़ा प्यारा रिश्ता है, और इसी रिश्ते को तो एक ईंट बनाकर बुनियाद कर दी खानदान की, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरी निशानी है, वरना एक छत के नीचे दो रह जाएं नामुमकिन। एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती कि इतने इख्तलाफ के बावजूद मियाँ बीवी साथ रहते हैं। क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं ना कि गौर व फिक्र करो, तो ज़रा सा गौर व फिक्र तो करके देखिए कि आपके शौहर 100% आप जैसे, अगर होते एक दिन ना रहती आप उनके साथ। एक मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा था, तो जो थर्ड पर्सन थे ना जो काउंसलिंग करा रहे थे, तो खैर वो काफ़ी उलझाव हो गया, तो जो बीच वाले थे उन्होंने उनसे कहा कि आपने काफ़ी ज़्यादा बातें सुन ली हैं दोनों की, मसला क्या है, अब सुनिएगा गौर से, आप लोग भी ज़रा इंजॉय करें। कहने के आपको क्या समझ आया, कहने लगा मसला यह है कि एक औरत है और एक मर्द है, इतना सा बस फ़र्क है और बात कोई नहीं है। तो एक्सेप्ट इट, अपनी महदूदियत को पहचानिए। अगर मैं अपने मियाँ से इतनी लंबी लिस्ट जो चाहती हूँ कि वो गुलफाम शहजादे हों, वो फूल लेकर आएं, वो मेरी कोई बात ना टालें और मेरी तारीफ़ें भी करें, फिर मैं रूठ जाऊँ तो चाय का कप ले लेके मेरे पीछे फिरें, फिर दरख्त पे घूम के गाना भी गाएं, तो क्या आप कोई मलका सब है? आप भी क्या हैं, अपने आप को तो देखें। और माजरत के साथ माओ से, आप अपने बेटे के लिए तो ढूंढ रही हैं परी और शहजादी, और वो रात अंधेरे में बिठाऊं तो रोशनी हो जाए, बिजली का बिल कम आए, तो आपने ज़रा अपने बेटे साहब को भी देखा है, उसके साथ चलना है आपकी बहू ने, महदूदियत को पहचानी है। किधर जाए, हमें कौन मिले जो हम जैसे थे, ना हम शहजादियाँ ना वो शहजादे, ना हम रानियाँ ना वो राजे, बस ये फिल्मों में होता है सब कुछ। इस चीज़ ने आज हमारी बच्चियों को निकाह और शादी से रोका हुआ है, पसंद ही नहीं आ रहा, और अब बेटों को लड़की नहीं पसंद आ रही। भी क्या चाहिए आपको बेटा साहब, ज़रा कान तो पकड़ाइए, आपके साफ़ करूं, आप क्या चाहते हैं, वो आ गई तो आपके साथ रह लेगी, कभी ये भी तो आप सोचें। अपनी महदूदियत को पहचान कर रिश्ते कीजिए, सच रियल फैक्ट्स कोल्ड फैक्ट्स। वो ताल्लुक बहुत देर तक चलता रहता है और हमेशा चलता रहता है जिसमें पहले ही बता दिया गया हो कि भाई ये गड़बड़े हैं हमारी, बाद में जो पता चलना है तो आज ही बता दें। तो बहरहाल ये गौर व फिक्र था, आगे चलिए। इसकी कुदरत की निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और तुम्हारी ज़ुबानों और रंगों के इख्तलाफ भी है, दानिशमंदों के लिए इसमें यकीनन बड़ी निशानी है। और भी इसकी कुदरत की निशानियाँ तुम्हारी रातों और दिन की नींद में हैं, और इसके फजल यानी रोज़ी को तुम्हारा तलाश करना भी है। जो लोग कान लगाकर सुनने के आदी हैं इनके लिए इनमें बहुत सी निशानियाँ हैं, और उसकी निशानियों में से एक ये भी है कि वो तुम्हें डराने और उम्मीदवार बनाने के लिए बिजलियाँ दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है, इससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देता है, और इसमें भी अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। और इसकी एक निशानी ये भी है कि आसमान और ज़मीन इसी के हुक्म से कायम है, फिर जब वो तुम्हें आवाज़ देगा फिर एक बार की आवाज़ के साथ ही तुम सब ज़मीन से निकल आओगे। फजर की पहली अजान पे तो तुम बिस्तर से नहीं निकलते थे, सूर की पहली पुकार पे तुम कब्रों से निकल आओगे, वहाँ कोई नहीं कहेगा लाइट बंद करो मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, और जो यहाँ फजर पे उठने के आदी हो गए उनको तो वहाँ मज़ा भी बहुत आ रहा होगा। अल्लाह ताला हमें नमाज़ों का पाबंद कर दे। और ज़मीन व आसमान की हर हर चीज़ इसकी मलकियत है और हर एक इसके फरमान के मातहत है, वही है जो अव्वल बार मखलूक को पैदा करता है फिर इसे दोबारा पैदा करेगा, और ये तो इस पर बहुत ही आसान है। इसी की बेहतरीन और आला सिफत है, आसमानों में भी और ज़मीन में भी, और वही गलबे वाला और वो हिकमत वाला है। तो ये थी आयत, आयत 20 से 21 पे एक रिवायत है। अल्लाह ताला ने आदम को एक मुट्ठी यानी जस्ट लाइक एक मुट्ठी मट्टी से पैदा किया, जिसको इसने सारी ज़मीन से लिया था। चुनाचे आदम की औलाद अपनी मट्टी की मुनासबत से मुख्तलिफ रंग की है, कोई सफ़ेद, कोई सुर्ख, कोई काला और कोई इनके दरमियान, कोई नरम खू तो कोई दुरुस्त खू, कोई सख्त गिर, कोई खबीस और कोई पाकबाज। ये अबू दाऊद की रिवायत है 4693। आपको क्या लगता है कि आपको किस मट्टी से अल्लाह ने बनाया? ये गोरी काली तो छोड़ दें, हम सारे एक ही जैसे हैं। क्या आप नरम मट्टी से बनी कि सख्त मट्टी से बनी? अपने आप को चेकिया करें, अपनी महदूदियत को पहचानें और जो कमियां अपनी दूर कर सकें उसको दूर करें। कुछ ज़रूरी नहीं कि जो बातें हम बचपन से लेकर आज तक अपने अंदर बुरी पाल ही रहे थे, अब उनको मज़ीद पाल पूल के बड़ा करते रहे, फेंकी उनको। ये कुरान आपको मुझे अपनी इसलाह सिखाता है। नियत करें यहाँ सब मेरे समेत बैठकर अपनी कोई एक शॉर्ट कमिंग छोड़नी है, आज के बाद नहीं। और कैसे छोड़नी है? सजा दें खुद को, अगर मैंने ये किया तो मैं ये करूँगी, इतना सदका दूंगी, इतने नफिल पढ़ूंगी, इतने नफिल रोज़े रखूँगी, वगैरह वगैरह। आगे देखिए 22, 23, अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ, ये रंग, ये ज़ुबान ने और वसीतर कायनात। चूँकि हम तो यहाँ रहते हुए उर्दू ही ज़्यादा बोलते हैं ना, और माशाल्लाह हमारी मेड्स हैं वो भी इंग्लिश बोलने लग गई, हमारे बच्चों को तो उर्दू भी नहीं समझ आती। लेकिन आप ज़रा सा बाहर की दुनिया में जाएं, चलें अल्लाह आपको उम्रे पे ले जाए, कितनी ज़ुबानों के लोग, कितने रंगों के लोग आप देख रहे होते। एक औरत है कि आप उसकी वो देखते ही रह जाते हैं, आप कहते हैं ये सीरियन है, पतली नाक, खड़ा सा माथा और चमकता हुआ चेहरा, उसके पीछे एक अफ्रीकन सिस्टर आ जाती हैं। ये किसने रंग बनाया? क्या उसकी चॉइस थी? और आप सिर्फ यूरोप में 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट लेकर आप एक हफ्ते का टूर करिए, सिर्फ एयरपोर्ट पे बैठने और उतरने में लैंग्वेज बदल जाती है। कहीं सूरती है तो कहीं वो एग्ज़िट है, तो कहीं वो मखरज है, तो कहीं कुछ है, और आपको सारा इल्म आपके हाथ में रह जाता है। लो, इतनी मेहनत करके नॉर्वेजियन सीखी और आपको अब डेनिश नहीं आती। अच्छा, निकलो इधर से तो उधर। और मुझे यूरोप में जाकर एक बात पता चली, बचपन में पता चल जाती, मैंने कभी स्पेलिंग नहीं थे याद करने। और वो क्या है कि कोई स्पेलिंग गलत नहीं होते। मसलन स्कूल के स्पेलिंग क्या है? SCH OOL। आपको पता कि नॉर्वेजियन में स्कूल के स्पेलिंग क्या है? SKOLE, स्कूल है। पंजाबी में इंग्लिश बोले, मैंने वहाँ जाके कहा मैंने क्यों बचपन में टाइम वेस्ट किया, सब वही इंग्लिश के स्पेलिंग बदले बुदले हुए हैं। और आप कहते हैं कि लो जी ज़िंदगी लगा दी हमने स्पेलिंग याद करने में, यहाँ तो पता चला हम तो ठीक थे, ऐसे हमारी टीचर ने हमारे नंबर काट दिए। ये कौन सिखाता है? और नॉन मुस्लिम्स को दावा करने में दैट इज़ द एक्सीलेंट पॉइंट, कुरान की ज़ुबान नहीं आज तक बदली। फिर आप देखिए निज़ामे कायनात में तब्दीलियों के औकात, आज कितने बजे रोज़ा खुलेगा, आज कितने बजे सहरी होगी, रोज़ नहीं पूछते। और आप जानते ना कि यहाँ तो रोज़ 1-1 मिनट जा रहे हैं ना आगे। 2-3 दिन पहले मुझे एक स्लाइड मिली जिसमें फैसलाबाद, इस्लामाबाद था शायद या लाहौर था, और तीसरा कराची का फ़र्क। मैं हैरान होगी कि एक ही मुल्क है लेकिन इधर भी 5-5, 6-6 मिनट का फ़र्क है। ये कौन कर रहा है? ये अल्लाह की शान है, कभी नहीं गौर करते इस पर। फिर आप देखिए बंदा मोमिन को तब्दीली के औकात में रब को याद करना है। ये जो नमाजें हैं ना सुबह शाम के अस्कार, ये चेंजेस हैं, चेंज बड़ी मुश्किल होती है। तो कहा उस वक़्त अल्लाह को याद कर लिया करो ज़िंदगी में जब कोई तब्दीली का मरहला आए। क्या सीखा आपने? मैंने अल्लाह की निशानियों पे गौर व फिक्र करना है, इल्म रखना है, गौर से सुनना है, अक़ल से काम लेना है, अल्लाह के खालिक होने पर ईमान रखना है, याद रखना है कि मट्टी से बने हैं और मट्टी ही में जाना है। याद है, मैं मट्टी न लगने दें कपड़े पे और मट्टी में जाना है। अल्लाह अकबर। आगे 28 से 40, मुश्किल और आसानी में इंसानों के इंतहाई रवैये, एक्सट्रीम बिहेवियर, अल्लाह हमें एक्सट्रीमिज्म से बचा दे। देखते हैं, दरब लकुम मसलम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक मिसाल खुद तुम्हारी ही बयान फरमाई है। जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है क्या इसमें तुम्हारे गुलामों में से भी कोई तुम्हारा शरीक है कि तुम और वो इसमें बराबर दर्जे के हो, और तुम इनका ऐसा ख़तरा रखते हो जैसा खुद अपनों का? हम अकल रखने वालों के लिए इसी तरह खोल खोल कर आयतें बयान करते हैं, बल्कि बात यह है कि ये जालिम तो बग़ैर इल्म के ख्वाहिश परस्ती कर रहे हैं, और कौन राह दिखाए जिसे अल्लाह राह से हटा दे? इनका भी कोई मददगार नहीं। अल्लाह तो हमें कभी ख्वाहिश परस्त ना करना और फिर हमें हिदायत के रास्ते से उतार कर गुमराही के रास्ते पर ना डालना। बस आप यकसू होकर अपना मुँह दीन की तरफ मुतवज्जे कर दें। अल्लाह ताला की वो फितरत जिस पर इसने लोगों को पैदा किया है, इस अल्लाह के बनाए को बदलना नहीं, यही सीधा दीन है। लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। लोगों, अल्लाह की तरफ रजू होकर इससे डरते रहो और नमाज कायम रखो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। इन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी गिरो गिरो हो गए, हर गिरो उस चीज़ पर जो उसके पास है मगन है। अल्लाह हमें फ़िरकों से बचा दे और टुकड़े टुकड़े होने से बचा दे। लोगों को जब कभी कोई मुसीबत पहुंचती है तो अपने रब की तरफ पूरी तरह रजू होकर दुआएं करते हैं। फिर जब वो अपनी तरफ से रहमत का जायका चखाता है तो इनमें से एक जमात अपने रब के साथ शिर्क करने लगती है ताकि वो इस चीज़ की नाशुक्री करे जो हमने दी है। अच्छा, तुम फ़ायदा उठा लो, अभी अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। क्या हमने इन पर कोई दलील नाजिल की है जो इसे बयान करती है, जिसे ये अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं? और जब हम लोगों को रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो खूब खुश हो जाते हैं, और अगर इन्हें इन्हीं के हाथों के करतूत की वजह से कोई बुराई पहुंचे तो एकदम वो महज नाउम्मीद हो जाते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ताला जिसे चाहे कुशादा रोज़ी देता है और जिसे चाहे तंग? इसमें भी लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं निशानियां हैं। बस कराबतदार को, मिस्कीन को, मुसाफिर को, हर एक को इसका हक दीजिए। हकूक की बात हो रही है। ये इनके लिए बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा देखना चाहते हों। ऐसे लोग निजात पाने वाले हैं। तुम जो सूद पर देते हो कि लोगों के माल में बढ़ता रहे, वो अल्लाह ताला के यहाँ नहीं बढ़ता। और जो कुछ सदका ज़कात तुम अल्लाह का चेहरा देखने और उसकी खुशनुदी के लिए दो, तो ऐसे लोग ही अपना दुगना करवाने वाले हैं, यानी दोचन करने वाले हैं। अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर रोज़ी दी, फिर मार डालेगा, फिर ज़िंदा कर देगा। बताओ, तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा है जो इनमें से भी कुछ कर सकता हो? अल्लाह ताला के लिए पाकी और बरतरी है हर उस शिर्क से जो ये लोग मुकर्रर करते हैं। तो क्या पता चला, आयत 29 में ख्वाहिश परस्ती की बात थी। आज तक शैतान ने उतने लोगों को गुमराह नहीं किया, इबलीस ने नहीं किया, जितना ख्वाहिश परस्ती ने किया। ये जुमला लिख लीजिएगा आप, अगर लिख सके तो। ख्वाहिश परस्ती इंसान को गुमराह करती है जब इंसान अक़ल से इदराक नहीं करता, ज़िद्द और जहालत परस्ती पे उतर आता है, इल्म से बेबहरा हो जाता है, हिदायत से दूर होता है, हलाल और हराम की तमीज़ छोड़ देता है, अपने अमाल को किसी असूल और जाब्ते के मुताबिक नहीं परखता, और ख्वाहिश परस्ती की कशिश इसके हवास पे छा जाती है। ये 7 नुक्ते हफ्ते के 7 दिनों में एक एक करके याद रखिएगा। अगर ये 7 चीज़ें हैं ना, तो बस फिर आप समझ लें, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता भटकने से और बहकने से। अभी क्या सीखा? अपना रुख यकसू होकर दीन की तरफ करना है, रिश्तेदारों को इनका हक देना है, मिस्कीनों और मुसाफिरों को इनका हक देना है, अल्लाह की रज़ा का इरादा रखना है, दीन को टुकड़े टुकड़े नहीं करना, मायूस नहीं होना। इंशाल्लाह हम बदल जाएंगे। बोलिए इंशाल्लाह। रुकू नंबर 8, 41 से 53। लोगों की बदामालियों के सबब दुनिया फसाद का शिकार हो गई। जहरल फसाद फिल बर्री वल बहर, खुश्की और तरी में लोगों की बदामालियों के बायस फसाद फैल गया, इसलिए कि इन्हें इनके बास करतूतों का फल अल्लाह ताला चखा दे। बहुत मुमकिन है कि वो बाज आ जाएं। ज़मीन में चल फिर कर देखो तो सही कि अगलों का अंजाम क्या हुआ, जिनमें से अक्सर लोग मुशरिक थे। बस आप अपना रुख सीधे और सच्चे दीन की तरफ ही रखें, कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसका टल जाना अल्लाह ताला की तरफ से है ही नहीं। उस दिन सब मुतफरिक हो जाएंगे। कुफर करने वालों पर इनके कुफर का बवाल होगा और नेक काम करने वाले अपनी ही आरामगाह संवार रहे हैं। कॉन्शियस करूँ आपको, आयत 44 पे आप अपना बेडरूम सेट कर रहे हैं, आरामगाह। आप जाके इस आयत की अरबी पढ़िएगा 44 में, आपको पता चलेगा यम हदून। बेडशीट बिखरी हो ना, सारा कमरा मैसी लगता है, ऐसी है ना, उसको सीधा करते हैं बाकी सब ठीक है। अल्लाह कह रहे हैं ये नेकियां करके तुम जन्नतों में अपने काउचेस और अपने बेडशीट्स और अपने सोने की जगहों को संवार रहे हो। अल्लाह हमें मज़ीद संवारने की तौफीक दे ताकि अल्लाह तआला इन्हें अपने फजल से जजा दे जो ईमान लाए और नेक आमाल किए। वो कुफार को दोस्त नहीं रखता। इसकी निशानियों में से खुशखबरियां देने वाली हवाओं को चलाना भी है, इसलिए कि तुम्हें अपनी रहमत से लुत्फ़ानंदोज़ करे, और इसलिए कि इसके हुक्म से कश्तियाँ चलें, और इसलिए कि इसके फ़ज़ल को तुम ढूंढो, और इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो। और हमने आपसे पहले भी अपने रसूलों को इनकी कौम की तरफ भेजा, वो इनके पास दलीलें लाए, फिर हमने गुनाहगारों से इंतकाम लिया। हम पर मोमिनों की मदद करना लाजिम है। इसको नोट कर लीजिएगा, हक्कन अलैना, अल्लाह ने खुद हक किया है, कोई अल्लाह को नहीं मजबूर कर सकता, अल्लाह ने ये बात खुद ही अपने ऊपर लाजिम कर ली। अल्लाह ताला हवाएं चलाता है, वो अबर को उठाती हैं, फिर अल्लाह अपनी मंशा के मुताबिक इसे आसमान में फैला देता है और इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर आप देखते हैं कि इसके अंदर से कतरे निकलते हैं, वदक, छोटे छोटे मीह के कतरे, और जिन्हें अल्लाह चाहता है इन बंदों पर वो पानी बरसा देता है, तो वो खुश खुश हो जाते हैं। यकीन मानना कि बारिश इन पर बरसने से पहले पहले तो वो नाउम्मीद हो रहे थे। ये कौन सी निशानी है जी? चार में से कायनाती निशानी कौनी? बस आप रहमत इलाही के आसार देखें कि ज़मीन की मौत के बाद किस तरह अल्लाह इसे ज़िंदा कर देता है। कुछ शक नहीं कि वही मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है, और वो हर हर चीज़ पर कादिर है। और अगर हम बादे तुंद यानी तेज़ हवाएं चला भी दें, और ये लोग अपनी खेतियों को मुरझाई हुई जर्द पड़ी हुई देख भी लें, तो फिर इसके बाद ना शुक्री करने लगे। बेशक हम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना बहरों को अपनी आवाज़ सुना सकते जबकि वो पीठ फेर कर मुड़ रहे हों, और ना पंदों को इनकी गुमराही से हिदायत करने वाले हैं। आप तो सिर्फ इन्हीं लोगों को सुनाते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, बस वही इताअत करने वाले हैं। तो क्या सीखा इन आयात से? अल्लाह की तरफ रुजू करना है, शुक्रगुजार बनना है, इताअत करना है, नेक अमाल करने हैं, अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करना है, और शिर्क नहीं करना। आगे है रुकू नंबर 9, जो इस सूरत रोम का आखिरी रुकू है, 54 से 60। रोज़े क़्यामत गुनाहगार हसरत में होंगे। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन दाफ, अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पैदा किया, फिर इस कमज़ोरी के बाद तवानाई दी, फिर इसकी तवानाई के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा दिया। जो चाहता है पैदा करता है, वो सबसे पूरा वाकिफ और सब पर पूरा कादिर है। और जिस दिन क़्यामत बरपा हो जाएगी, गुनाहगार लोग कसमें खाएंगे कि दुनिया में एक घड़ी के सिवा नहीं ठहरे, इसी तरह बहके हुए ही रहे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया, वो जवाब देंगे कि तुम तो जैसा कि किताबुल्लाह में है, यौमे क़्यामत तक ठहरे रहे, आज का दिन क़्यामत ही का दिन है, लेकिन तुम तो यकीन ही नहीं मानते थे। बस उस दिन जालिमों को इनके उज़र बहाने कुछ काम न आएंगे, और न इनसे तौबा और अमल तलब किया जाएगा। बेशक हमने इस कुरान में लोगों के सामने हर तरह की मिसालें बयान कर दी, आप इनके पास कोई भी निशानी लाएं, ये कुफार तो यही कहेंगे कि तुम बेहुदा गो, बिल्कुल झूठे हो। अल्लाह ताला इन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते, यूं ही मोहर लगा देता है। बस आप सब्र करें, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है। आपको वो लोग बिल्कुल हल्का यानी बेसब्रा न करें जो यकीन नहीं रखते। तो आपने देखा कि कुफार की हठ धर्मी और नबी सल्लम के सब्र की बात है। आयत 59 में हठ धर्मी दिलों पर मोहर का सबब बनती है, इसको देखा हमने। जब लोग हक बात को सुनने और समझने की बजाय हठ धर्मी का तरीका इख्तियार कर लेते हैं, तो अल्लाह सुब्हान तआला उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। आपके मेरे लिए अमल की बातें, सब्र करना है, अल्लाह के वादे को सच्चा समझना है, यकीन ना करने वालों के लिए हल्का साबित नहीं होना, दुनिया की ज़िंदगी में बहक नहीं जाना, हक पे अमल करने वालों को बातिल नहीं कहना, और इल्म हासिल करना है। और यहाँ पे इतनी खूबसूरत सूरत पूरी हुई।